है मृत्यु, आपकी ना तो कोई आदि है ना कोई आपका मृत्यु हो सकता है। विभूम, विभू का अर्थ होता है सबसे बड़ा। समम चरंतम सर्वत्र, सम समान, चरंतम आप घूमते रहते हैं, या खास करके यहां पर कुंती देवी कहती है कि आप आपकी कृपा सम रूप से सबको बांटते रहते हैं, आप कोई भेदभाव नहीं करते, सर्वत्र सबके लिए। भूतानाम यन मिथ, यत भूतानाम मिथ, और मनुष्य समाज में, पशु समाज में, कीटक समाज में, कोई भी समाज में जो भी कली ही, यहां पर कली का शब्द अर्थ होता है झगड़े, संघर्ष, लड़ाई, मतभेद, ये क्यों उपस्थित होते हैं? फिर मिथः, जब दो जीव एकत्र आ जाएंगे तो उनके बीच में कुछ ना कुछ मतभेद तो होगा ही। काफी सुंदर तत्वज्ञान यहां पर कुंती महारानी बता रही है। बार बार इसका हमें इस विचार को मन में लाना चाहिए कि ये एक फूफी अंट अपने भांजे को देखकर कह रही है, मन में यह प्रश्न उठता है कि भगवान के साथ हमारा संबंध कैसा है, भगवान किस प्रकार से भक्त के प्रेम का प्रतिसाद देते हैं, या सारे प्रश्नों का एक निचोड़, एक सार, एक कॉलेज प्रोग्राम में एक युवक ने पूछा, वहां जाकर करेंगे क्या? आप कह रहे हैं भगवत धाम चलो, भगवत धाम चलो, जो भी है नौकरी धंधा व्यवसाय कुटुंब पालन पोषण ये सब एक साइड बिजनेस के रूप में करो, यही है ना हमारे फिलोसफी का सार, कि आप सब में से कोई सर्जन्स हैं, कोई एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, कोई सर्वेंट्स हैं, असिस्टेंट्स हैं, घर की गृहिणियां हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, और हम सोचते हैं कि ये मेरे जीवन का मुख्य पहलू है कि मैं एक डॉक्टर हूं, मैं एक ड्राइवर हूं, मैं एक साइंटिस्ट हूं, मैं एक ब्रह्मचारी हूं, मैं एक सन्यासी हूं। लेकिन भागवत हमें बताता है इस सब को आप एक साइड बिजनेस के रूप में देखो, ये आपकी वास्तविक पहचान नहीं है। जो असली स्वरूप है उसकी प्राप्ति के लिए ये कुछ सहायता कर सकता है, इसलिए उसको साथ में रखो, देखो कितनी सहायता करता है। अगर सहायता नहीं करता तो इसको छोड़ देना चाहिए। होता क्या है, अगर वो आध्यात्मिक जीवन इस जीवन में सहायक नहीं होता तो हम उसको छोड़ते हैं। कई बार किसी को पूछा कि क्यों माला होती है कि नहीं, अरे काहे की माला, अभी इतनी नौकरी करनी पड़ रही है, ये करना पड़ रहा है, वो करना पड़ रहा है। तो कुंती देवी एक भगवान की शुद्ध भक्त है, और इस महाभारत के प्रसंग में भगवान कृष्ण उसके भाई के पुत्र के रूप में उपस्थित होते हैं, तो वो तो कितना प्रेम का नाता है। लेकिन साथ ही साथ ये ऐश्वर्य भाव, भगवान का, भगवान की भगवत्ता, संस्कृत शब्द है भगवत्ता, मतलब गॉडनेस, गॉडनेस उसका जो जैसे सिकनेस उस व्यक्ति का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, उसका एक चिन्ह है। तो वैसे भगवान की भगवत्ता क्या है? रूप गोस्वामी अपने भक्तिरसामृत सिंधु में बताते हैं, Krishna doesn't look like God. Krishna भगवान के रूप में अपना स्वरूप दिखाते नहीं, दो हाथ, दो पैर, दो चरण और दो आंखें, सब कुछ उनका नॉर्मल ह्यूमन बींग जैसे है। क्यों? क्योंकि इससे उनकी जो लीला है, वृंदावन लीला, वो पूर्ण रूप से प्रकट हो सकती है। तो ये उन्होंने अपने सुविधा के लिए लिया हुआ रूप है। वेस्टर्न लोग कहते हैं कि आप लोग क्या कहते हैं, अपने जैसे ही भगवान को आरोपित फीचर्स देते हैं कि आपको दो आंखें हैं तो भगवान को भी दो आंखें दे दी, आपको दो हाथ हैं भगवान को भी दो दिए। लेकिन भगवान की लिमिट नहीं है दो आंखों की या दो हाथों की। भगवान का विराट रूप है, उसमें कितने आंखें हैं, सहस्र शीर्षा, सहस्र पात, हजारों हजारों आंखें, हजारों हजारों हाथ। और भगवान ने वो रूप दिखाया अर्जुन को। अर्जुन वास्तविक ऐश्वर्य भाव वाले भक्त नहीं है, लेकिन गीता के ड्रामा के समय अर्जुन एक मामूली बद्ध जीव जैसे प्रश्न पूछ रहे थे। और उस समय जो सब्जेक्ट निकला, कृष्णा एक्सप्लेन्स माय फॉर्म एज अ यूनिवर्स, इस ब्रह्मांड के रूप में, ब्रह्मांड में मैं कैसे दिख सकता हूं, तो अर्जुन ने पूछा वो अगर मैं देखूं, देख सकता हूं क्या। अर्जुन एक बद्ध जीव है ड्रामा के लिए, वैसे बद्ध जीव नहीं है वो, लेकिन इस गीता के नाट्य में अर्जुन जो प्रश्न पूछ रहे हैं वो एक साधक के प्रश्न है। जैसे कई बुद्धिमान लोग तथाकथित समझते हैं वो भगवान हमारे सामने क्यों नहीं आता, भगवान को सामने लाओ हमारे। अरे भगवान को सामने आने में क्या कठिनाई है, लेकिन कम से कम अर्जुन जैसे पृच्छा तो करो कि हाथ जोड़कर, अगर आप यदि मन्यसे तत्शक्यम, अगर आप सोचते हैं कि मैं आपका ये ब्रह्मांड रूप देखने के लिए योग्यता प्राप्त हूं तो कृपया दिखाइए, बस इतनी सिंपल एक रिक्वेस्ट करेंगे तो भगवान क्यों नहीं मानेंगे। और भगवान कहते हैं तुरंत ये रूप इन आंखों से नहीं दिख सकता, दिव्यम वदामि ते चक्षु, मैं आपको वो दिव्य चक्षु देना, मुझे देना होगा आप। और फिर जैसे कोई सडनली एक बड़ा स्क्रीन लिट अप हो गया, इसी तो हमारा एक घटिया किस्म का अनुभव या एनालॉजी है, अर्जुन के सामने एकदम ऐसे अनेक रूप, अनेक बाहु, वक्त्र, नेत्र और किस मुख से तो आग निकल रही है। कोई एक मुख ऐसा था जिसने ऐसी आंखें खोली तो वो सूरज था, वो जो ये सूर्य है वो एक मुख का केवल एक आंख थी, वो एक मुख की आंख चंद्र थी। बड़े 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 पहाड़ वो तो ऐसे कंधे पर इधर उधर आ रहे हैं, बड़ी बड़ी विशाल नदियां, क्या क्या नहीं देखा, जो भी सब देखना था वो एक स्पॉट पे भगवान ने दिखा दिया। और ऐसे नहीं कि उस नजारा दिखाने के लिए भगवान खुद वहां से अंतर्धान हो गए कि या तो मैं या तो ये, दोनों में से एक ही दिख सकता है, नहीं ऐसी भी बात नहीं थी। अर्जुन वहां रथ पर बैठे हैं, कृष्ण रथ पर बैठे हैं और बाकी लोग सब देख रहे हैं ये क्या हो रहा है। अर्जुन ऐसे सबको तो दिखाई नहीं दिया क्योंकि ये लिमिटेड ऑडियंस के लिए था केवल ये। तो अर्जुन सब देख रहा है, थर 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 कांप रहा है और बाकी सारे जो वीर हैं, योद्धा हैं, वो सोच रहे हैं ये क्या दोनों के बीच में हो रहा है, अब तक तो बात कर रहे थे अभी चुप हो गए एकदम, क्या हो गया। और फिर अर्जुन के मन में जो प्रश्न था कि ये बड़े बड़े वीर हैं, इनको कौन मारेगा, ये कौन सब करेगा, मनुष्य के मन में कभी प्रश्न आता है ना, ये इतना सब काम मुझ पर है ये कैसे होगा, अभी सारे समाज की जिम्मेदारी मुझ पर है। कई नेता सोचते हैं अगर मैं चला जाऊंगा तो देश का क्या होगा, मुझे अपनी कोई परवाह नहीं है, देश का क्या होगा। तो अर्जुन एक योद्धा के भाव में कि ये इनका क्या होगा, ये सबको कौन मारेगा। और देखा कि एक विराट रूप का मुंह आ करके ऐसे खुला था, और जैसे पतंगा या पतंगे बोलते हैं जिसको भोजपुरी में हिंदी में, तो वो जैसे जाकर आग के लपटों में सब सब करके जा रहे थे अंदर, और कुछ चूरने थी वो जैसे मिक्सर ग्राइंडर में अगर आप कुछ डालोगे, घर की चक्की होती है उसमें दाना डालेंगे तो कैसे पीस जाते हैं, वही वही शब्द यूज किया है, चूरने थी। कई बड़े बड़े योद्धाओं का उनके अस्त्र शस्त्र शिरस्त्राण चिलखत आर्मर के साथ चूरण हो रहा था उधर, और कोई तो जल रहे थे उधर। उन्होंने कहा ये सब काम तो उन्होंने पहले ही करके दिया है, मुझे किसी को मारने की जरूरत ही नहीं है, मुझे केवल वो जैसे लकड़ी की तलवार होती है वो खाली ऐसे ऐसे घुमाओ बस काम हो गया। तो अर्जुन उस समय ये दोनों भाव वो मन में बहुत टेंशन इतना हो गया कि वो एक को तो निकलना था ही, तो ये ऐश्वर्य भाव का टू मच ऐश्वर्य भाव होने कर अर्जुन ने कहा भ्रमतीव मेरा मन घूम रहा है, दिशो न जाने कौन सी दिशा कहां है कुछ पता नहीं चल रहा है। जैसे किसी आदमी को ऐसे घर 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 घुमाकर छोड़ देते हो तो वो ऐसे सडनली जाके कुछ पकड़ लेता है, अरे क्या हो गया। कीर्तन में कभी कभी नए आदमी को खास करके कभी कभी भक्तों को ये आनंद होता है कि किसी नए भक्ति को घुमाओ उसको कीर्तन में, फिर सब लोग उसको तीन चार लोग उसको मिला मिला के घुमाते हैं और फिर छोड़ देते हैं सीधा, तो वो बेचारा किसी कुर्सी पे आकर बैठ जाता है ऐसे ही, कभी आदत नहीं है ऐसे करने की। हम अपने दिमाग ढंग से करते हैं ना कीर्तन, हम तो कोई कोई डिमांड ड्यूटी तो हमारे स्पिन आचार्य कहते हैं, वो तो घूमते रहते हैं, बाकी लोगों को प्रैक्टिस नहीं होती है। तो ये एक दृश्य देखकर अर्जुन पूरा भौचक तो बहुत कम शब्द है, वो कह रहा है कि दिशो न जाने कौन सी दिशा कहां है कुछ पता नहीं चल रहा है। और फिर अर्जुन कह रहा है बस 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 क्षमा क्षमा क्षमा, अरे मैं आज तक आपको कृष्ण यादव सखा ऐसे बोलता था, मित्र हे मित्र चलो शिकार खेलते हैं, हे मित्र चलो कुछ भोजन करते हैं, तो आज मुझे पता चला कि आप कोई ऐसे मेरे मामूली मित्र वगैरह नहीं है आप तो। और भगवान ने भी उसको बोलने दिया, बोलते जा तू ऐसे कहेगा तो बाद में कलयुग की जनता समझ जाएगी ठीक से कम जो प्रेम से पढ़ेगा भगवत गीता, अगर अर्जुन तू ही ऐसे अरे मेरे दोस्त अरे मेरे कृष्ण ऐसे करते रहोगे ये तो आसान है ना, ये कोई भी कर सकता है, लेकिन बिना वो संबंध के, जैसे आपको पता चला कि कोई बहुत बड़े नेता हैं, उनका घर का नाम कुछ भी है चुन्नू है, अगर आपने आके उनसे कहा मिस्टर चुन्नू, आपने कहा है जबान संभाल कर बात करो, तो आपने कहा नहीं मैंने कहीं तो पढ़ा था कि आपके घर में आपको प्रेम से चुन्नू बोलते हैं, तो वो है कि निकाल दो इसको निकाल दो बाहर। जिस नाम से कभी प्रेम उत्पन्न होगा अगर प्रेमी व्यक्ति बोलेगा तो वही नाम अगर जिसको प्रेम नहीं है वो बोलेगा तो गुस्सा आता है कि नहीं। ये अगर मनुष्य जीवन में होता है भगवान के साथ भी ऐसे ही है, बिना वो संबंध स्थापित किए हुए हम भगवान को मेरे कन्हैया या मेरे श्याम ये शो नहीं कर सकते। खास करके गौड़ीय संत गौड़ीय गुरु शिष्य परंपरा में किसी भी आचार्य ने यहां तक के जो उनके मन में भाव है वो भी प्रकट नहीं किया डर के मारे कि लोग क्या समझेंगे। एक बार एक शिष्य ने भक्ति सिद्धांत सरोज ठाकुर से कहा कि कुछ तो ऐसे था कि राधा रानी और रुक्मिणी में आपको कौन सी अच्छी लगती है, या कुछ भी ऐसे एकदम हाई लेवल का प्रश्न। तो पहले तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर उसको देखते रहे दो तीन सेकंड तक, उन्होंने कहा कई महीनों से मैं भगवान श्याम सुंदर को एक फूल अर्पण करने की कोशिश कर रहा हूं, अब तक मुझे उसमें सफलता प्राप्त नहीं हुई है। मतलब ये दिखाने के लिए कि भगवान ऐसे नहीं है कि आप कहेंगे ये खाओ तो खा लिया उन्होंने, आपके लिए मैंने ये बनाया तो उन्होंने तुरंत स्वीकार कर लिया। भक्ति सिद्धांत ठाकुर भक्ति विनोद ठाकुर के पुत्र थे, केवल बायोलॉजिकल पुत्र नहीं आध्यात्मिक पुत्र भी, और जब भक्तिगुण ठाकुर ने अपने पद में लिखा कि मेरे जीवन की अभिष्ट इच्छा क्या है, कि राधा कुंड के निकट एक स्वानंद सुखद कुंज नाम के कुंज में मेरी नित्य सेवा चलती रहेगी, तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने अपने शिष्यों से कहा अब हमारे लिए कोई आशा का स्थान है, क्योंकि हमारे आचार्य अगर राधा कुंड स्थित एक कुंज में सेवा करेंगे तो उनके पार्षद उनके असिस्टेंट्स के रूप में हमको भी कुछ सेवा मिलेगी वहां पर। तो पहली बार शिष्य ऐसे सुन रहे थे कि ये बहुत ही कॉन्फिडेंशियल बातें बता रहे हैं, बोले लेकिन हम लोग कोई राधा कुंड पर निवास नहीं करेंगे, हम थोड़ी सी दूर सूर्य कुंड के आसपास रहेंगे, हम लोग वी विल बी सो क्लोज दैट व्हेन देयर इज अ सर्विस अपॉर्चुनिटी वी विल इमीडिएटली गो देयर, बट वी विल बी सो फार सो एज टू नॉट टू टेक इट चीपली, हम इतने निकट रहेंगे कि जब हमको बुलाया जाएगा तब हम तुरंत आ सकते हैं, और इतने दूर रहेंगे कि हम उस स्थान का कभी भी उसका गैर फायदा नहीं उठाएंगे। तो ये भाव है हमारे आचार्यों का, अर्थात अर्जुन का ये भाव जब भगवान बर्दाश्त नहीं कर सकते तो भगवान वो योग माया का पर्दा हटाते हैं और अर्जुन उसको देखकर कहते हैं बस हो गया, अभी वो अभी आपका वो सौम्य वपु दिखलाइए मुझे। ये भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। कई बार गीता के ऊपर टीका टिप्पण करने वाले लोग कहते हैं 11th कैंटो, ये 11th चैप्टर जो गीता का है वो उसका लास्ट लिमिट है, मतलब गीता भगवान ने इसलिए बताई कि वो विराट रूप सबको दिखा सके। विराट रूप के बाद कई लोग ऐसे लिखते हैं अपने टीका में कि 12वें अध्याय के बाद तो केवल कुछ भक्ति भक्ति की बातें की गई है जो तो सबको मालूम है पहले से। मतलब देखो या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति सजमी, जो भक्तों के लिए सबसे मेन पॉइंट है भक्ति का जो लास्ट आता है 18th चैप्टर में सर्वधर्मान परित्यज्य महामिकम शरणम व्रज, वो इन अभक्तों के टीका टिप्पणी में कहीं आता नहीं। और जिसको भक्त समझते हैं कि ये तो क्या है मामूली विराट रूप दिखाया, तो भगवान अर्जुन ने खुद ने कहा बस हो गया अभी, और इसको ये लोग उठा के रखते हैं कि बाप रे ये तो इसका मेन मुद्दा है। तो टू ऑपोजिट पॉइंट्स, क्योंकि टू ऑपोजिट मोटिवेशंस, मन का हेतु है वो अलग है। तो आइए हम आज से एक एक इन शब्दों के ऊपर प्रभुपाद ने बाकी जो प्रवचन में कहा है इसमें जो कहा है उसके ऊपर कुछ चर्चा करेंगे। प्रभुपाद ये परपोर्ट पहले परपोर्ट बाद में लेक्चर है। कुंती देवी न्यू दैट कृष्णा वॉज नीदर हर नेव्यू नॉर एन ऑर्डिनरी फैमिली मेंबर, वो जानती थी कि ये कोई मेरे कोई घर के सदस्य नहीं है ये। एक तरफ से अफसोस की बात है और एक तरफ से इट हैज टू हैपन लाइक दैट। आज कलयुग में ऐसे कई संत हैं तथाकथित, एक तो मैं सुनना पड़ा उनके बारे में कि वो जो एक व्यक्ति हैं वो भगवान विष्णु हैं, उनकी पत्नी है वो सुभद्रा है, उनका भाई है वो अनिरुद्ध है, या वो अनिरुद्ध, ये अपने फैमिली में सब आ गया, सब जो भी वैकुंठ के सारे लोग हैं वो उनकी फैमिली में आ गए। उनको पूछेंगे ये क्या है सब मामला है, थोड़ी कोई ऑथोराइज शास्त्र में लिखा है, बोले ये देखो ना यहाँ पर कुंती देवी भी अपने भांजे को भगवान के दिए, तो हम बोलेंगे तो क्या तकलीफ है, क्या तकलीफ है? उस संघ के सदस्य को पिछले मैराथन में हमारे एक भक्त ने गीता बांटी है, तो उसने बड़े प्रेम से गीता ले ली और बोला ये गीता पढ़ के आपको भी समझ में आएगा कि हमारे गुरु ही विष्णु है। मतलब आज ना कल तो ये होने वाला है ही, आप इसके बारे में निश्चिंत रहो कि जो कृष्ण गीता के वक्ता हैं वो स्वयं अभी कलयुग में उपस्थित हैं। मतलब कम से कम इतना अज्ञान समझ के तो हमको गारंटी होना चाहिए कि ये कलयुग है। कभी कभी थोड़ा कभी कभी डाउट निकल जाता है, कुछ अच्छी घटना होती है, कुछ हमारे मन में अच्छे विचार आते हैं, हम कहते हैं कि इतना तो बुरा नहीं है कलयुग, थोड़ा बाहर जाकर देखने पता चलेगा कितना है करके। जैसे स्वाइन फ्लू चला गया, अभी गया, किसने किया, क्या किया और कहां चला गया इसको पता नहीं, सही में गया। उसको स्वीकार कर लिया गया। मतलब आज जब मैंने एक न्यूज़पेपर, बाजू वाले के न्यूज़पेपर में सिक्स पेज पे देखा स्वाइन फ्लू के बारे में समाचार, मतलब मैंने सोचा कि अभी ये आइटम करके चला गया ये, नहीं तो पहले ये हेडलाइन मटेरियल था, वो उससे बढ़ता था न्यूज़पेपर का सर्कुलेशन। लेकिन ये जो कंटेमिनेशन है, भले स्वाइन की नहीं होगा और किसी का फ्लू का होगा, वो बाहर है, पूरा पूरा है। वैसे कलयुग में कलयुग का प्रदूषण केवल प्रकट और अप्रकट होता रहता है, नष्ट कभी नहीं होता। जब तक के जीव कृष्ण भक्ति आरंभ न करे तब तक ये कंटेमिनेशन नहीं जाएगा। कलेर दोष निधे राजन असती एक महान गुण कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग परम रचे, कि हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यही एकमात्र कलयुग के प्रदूषण को निकालने की दवा है, वैक्सीन है, उपाय है। कोई प्रश्न पूछ सकता है कि कैसे किसी व्यक्ति को अपना भांजा समझो और ये भी समझो कि ये भगवान भी है, या तो एक ही होगा ना, या तो भगवान है या तो भांजा है। तो कृष्ण इसको कैसे रिलीज करते हैं, या कृष्ण इसको एडजस्ट कैसे करते हैं? ऐसा है कि कुंती देवी एक यशोदा या रोहिणी या गोपियां उनकी श्रेणी वाली भक्त नहीं है। उनका उनकी भक्ति भी ऐश्वर्य भाव में ही समझी जाती है, लेकिन ऐश्वर्य भाव की भी अलग अलग ग्रेडेशंस हैं। द्वारका की महिषियां, द्वारका की रानियां, उनका ऐश्वर्य भाव एक अलग प्रकार का है। मथुरा के निवासियों का ऐश्वर्य भाव एक अलग प्रकार का है। और वृंदावन के भाव के बारे में कहते हैं वो ऐश्वर्य से बिल्कुल निर्लेप, इतना निर्लेप कि ये ऐश्वर्य भाव अगर वृंदावन में प्रवेश करना चाहेगा भी तो भी वो वृंदावन का टोटल वृंदावन का जो मूड है वो उसको निकाल लेता है। दो या तीन उदाहरण मिलते हैं हमको कृष्ण बुक में, 10वें स्कंद में। अपने बालक को यशोदा माई हाथ में ली हुई है, गोद में ली हुई है, और भगवान के मन में है कि अभी कुछ ही मिनटों में तृणावर्त आने वाला है, ये मैया मुझे लेकर क्या कर रही है इधर? अगर मैया की गोद से मुझे लेकर गया हो तो फिर तो उसके दुख का कोई सीमा नहीं रहेगी। तो सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं, भगवान ने अपने आप को पर्वत जैसा हेवी बनाया, वजनदार बनाया। तो यशोदा माई ने क्या किया, अरे इतना बालक इतना वजनदार कैसे बन गया, और यह सोचकर उसको बाजू में रख दिया, केवल बस वो भूल गई। मतलब ये मेरा बालक ही है, सडनली ऐसे नहीं कि ये कौन है, ऐसा भाव नहीं आ गया और भूल गई वो, और ऐसी जगह रख दिया आंगन में ताकि तृणावर देखे कि अरे ये तो अपना काम आसान कर दिया इन्होंने, और उसको उठा के लेके गया, फिर उसको ऊपर मार दिया। मरा हुआ तृणावर्त का धड़ धड़ाम जैसे नीचे गिर गया, शिला पर गिर गया, वो शिला के टुकड़े टुकड़े हो गए। और यशोदा माई कहती है कि अरे मेरा बालक बच गया। मतलब ये कैसे गिरा, ये असुर कैसे मरा, ये ऐश्वर्य भाव आता ही नहीं उधर। ये विशेष रूप से वृंदावन के भक्तों का प्रेम है। हमारा वो उद्दिष्ट है, हमारे गौड़ी आचार्य उस बिना ऐश्वर्य के प्रेम को देने के लिए आए हुए हैं। रस हर एक प्रकार का होता है। आज अगर हम दक्षिण भारत में उड़पी जाएंगे, मध्व संप्रदाय, तिरुपति, मेलकोटे, कुंभकोणम, सिम्हाचलम, वहां पर श्री संप्रदाय है। वृंदावन में थोड़ा सा और ऊपर उत्तर भारत में निंबार की संप्रदाय है और गुजरात में रुद्र विष्णु पुष्टि मार्ग वो संप्रदाय है। लेकिन ये श्री और मध्य संप्रदाय में केवल दास्य रस का ही वर्णन होता है। उनके सिद्धांत के अनुसार भगवान के साथ संबंध है दास रूप का, तो दास्य तो करते रहो और उस दास्यत्व के अलग अलग प्रकार हैं। चैतन्य महाप्रभु जिस रस को प्रदान करने के लिए आए हैं उसका वर्णन कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं अनर्पितम, ये रूप गोस्वामी कहते हैं अनर्पितम चरिम चिरात, ये कभी नहीं दिया था। इस प्रकार का भाव किसी ने नहीं दिया था वो देने के लिए समर्पितुम उन्नतज्वल रसाम स्वभक्ति श्रीयम हरि पुरट सुंदर ज्योति कदम्ब संदीपित सदा हृदय कंदरे स्फुरत वह सचिनंदन। तो ये देने के लिए, ये जो भाव है वो देने के लिए महाप्रभु आए हुए हैं। लेकिन महाप्रभु की जो प्रेमा भक्ति है उसको स्टेप बाय स्टेप क्रमशः जाने की विधि है कि कुंती देवी जैसे जो फॉर्मूला बताती है कि भगवान को पहले भगवान के स्वरूप में जानो ताकि हमारा सेवा भाव पहले पक्का बन जाए, सेवा के बाद फिर रस रसास्वादन। भक्ति चरु महाराज एक ग्रंथ के आमुख में प्रस्तावना में लिखते हैं कि ऐसे ही बातों बातों में किसी ने पूछा था प्रभुपाद से मेरा नित्य स्वरूप क्या हो सकता है प्रभुपाद, और ड्यूटी सिंसियर होगा। प्रभुपाद ने उसके प्रश्न को ऐसे एकदम दुत्कार नहीं दिया। प्रभुपाद ने कहा 16 माला कम से कम और 4 नियमों का पालन, वैष्णव सेवा, कृष्ण भक्ति का प्रचार, ये करते रहो, मैं स्वयं आकर तुमको तुम्हारा स्वरूप बताऊंगा। आई पर्सनली कम एंड टेल यू, डोंट वरी। यहां वहां श्याम कुंड राधा कुंड किसी बाबा किसी के पास जाकर पूछने की कोई आवश्यकता नहीं। तो कभी कभी एक भाव मन में होता है कि श्री प्रभुपाद जी ने हमको सब कुछ दिया है क्या? हाँ, सब कुछ दिया हुआ है। श्री प्रभुपाद ने कृष्ण कॉन्शियसनेस सोसाइटी एक यूनिवर्सिटी के तरह से प्रस्थापित किए जहां पर बालवाड़ी प्ले ग्रुप नर्सरी से लेकर पीएचडी तक सब कुछ अवेलेबल है। आप केवल स्कूल को छोड़ना नहीं, भले फेल हो गए तो भी वापस एग्जाम देना। तो कुंती देवी पहले भगवान को, शी न्यू परफेक्टली वेल दैट कृष्णा इज अ प्राइमेवल लॉर्ड हु लिव्स इन एवरीवन्स हार्ट एज अ सुपर सोल परमात्मा। अनदर नेम ऑफ परमात्मा फीचर इज काल। परमात्मा, ब्रह्म, परमात्मा, भगवान, तीन प्रकार से परम सत्य की अनुभूति होती है। एक जमाने में भारत में जो स्टीम इंजन थे, स्टीम इंजन मतलब भाप पर चलने वाले या कोयले पर चलने वाले कोल इंजन, तो गांव में हमेशा दिखता होगा कि अगर लोग सब स्टेशन पर खड़े हैं ट्रेन कब आएगी, ट्रेन कब आएगी, और ट्रेन हमेशा अंदर आने से पहले जोर से हॉर्न देती थी या जोर से उसकी जो एक फनल में से स्टीम दिखती थी। तो दूर से लगभग 700-800 मीटर दूर से अगर ट्रेन दिख रही है तो उस ट्रेन के बारे में हम क्या वर्णन कर सकते हैं? अगर प्रातकालीन सुबह सुबह पर हम कहीं जाने की कोशिश कर रहे हैं तो ट्रेन एकदम एक छोटा सा दिया दिख रहा है, कुछ भाप आ रही है, कुछ आवाज आ रही है। अधिक पास में आ गई ट्रेन तो पता चलता है कि ये वही ट्रेन है जो हमें चाहिए। लेकिन जब ट्रेन स्टेशन पर आकर खड़ी होती है तब हम देख सकते हैं कि अरे इसमें तो 15 डिब्बे हैं और सैकड़ों यात्री इसमें से प्रवास कर रहे हैं। तो प्रभुपाद जी समझाते हैं जो दूर से दिख रही थी वो भी ट्रेन ही थी और पास में आ गए तो वही ट्रेन है, और अभी सामने खड़ी है तो भी वही ट्रेन है। लेकिन अगर तीनों वस्तुओं का वर्णन किसको करने को दिया जाए, एक व्यक्ति से पूछा जाए कि आप वर्णन करो, डिफाइन, डिस्क्राइब क्या हो रहा है, तो कहेगा दूर से कुछ लाइट दिख रहा है, कुछ स्टीम आ रही है और नहीं, बस इतना ही मुझे मालूम है। उसको बोला दिया कि बाहर जाओ और एक को बुलाया जाओ। अब ट्रेन केवल 50 फुट पर है, अब डिस्क्राइब करो, डिस्क्राइब, वर्णन कीजिए क्या दिख रहा है आपको। बड़ा सा इंजन दिख रहा है, ड्राइवर भी दिख रहा है, उसका असिस्टेंट भी दिख रहा है, और कुछ नहीं दिख रहा है। और जब ट्रेन स्टेशन पर खड़ी है तब तीसरे व्यक्ति को अगर पूछा जाए कि अभी आप वर्णन करो कि क्या दिख रहा है आपको, तो वो कहेगा इंजन है, बहुत बड़ा है, पीछे 15 डिब्बे हैं, सैकड़ों व्यक्ति हैं, चाय वाले चाय बेच रहे हैं, पेपर वाले पेपर बेच रहे हैं, कोई झगड़ा हो रहा है, कोई विदाई कर रहे हैं, कोई ये कर रहा है, कोई वो कर रहा है। अब सोचिए, पहले व्यक्ति के नोट्स और तीसरे व्यक्ति के नोट्स का अगर उनकी तुलना की जाए तो कोई कहेगा ये दो अलग अलग लोगों की बात कर रहे हैं, तो ये क्या आपको लिख रहा है कि कोई दिया जैसा है, कुछ स्टीम आ रही है, बस। तो अब पता चला कि उसी वस्तु को तीन अलग अलग ढंग से देखेंगे तो पूरा अलग ही नजारा दिखता है। वस्तु तो एक ही है। एक पर्वत के बारे में प्रभुपाद ने एक उदाहरण दिया था कि कोहरे में अगर एक पर्वत कैसे दिखता है, अस्पष्ट। पर्वत के नीचे रहो तब वो अस्पष्ट या हरा सा, इधर से दिखते हो ना, वो सब थाना के पर्वत हैं, वो नीले नीले दिखते हैं, वहां जाओ तो नीला कुछ नहीं, वहां पर काला है, ब्राउन है, अलग अलग है। लेकिन जो व्यक्ति उस पर्वत पर खड़ा है वो देख रहा है कि यहां पर तीन गुफाएं हैं, यहां पर कोई प्राणी वाणी है नहीं, इतने पेड़ हैं। तो उसी तरह से ब्रह्म, ब्रह्म का मतलब है तेज, एक्चुअली ब्रह्म का मतलब है बड़ा, सबसे बड़ा। और ब्रह्म से दूसरी बड़ी अवस्था है परमात्मा की, लेकिन परमात्मा है छोटा, कभी भी लोग समझ नहीं पाते। ब्रह्मवादी लोग हैं वो केवल ब्रह्म का जो ब्रह्म वाक्य है कि ब्रह्म मतलब बड़ा, मतलब ब्रह्म मतलब बड़ा, और भगवान मतलब छोटा। जैसे ये समझते हैं ये ब्रह्म छोटा है, वो ब्रह्म बड़ा है। लेकिन जो जानते नहीं, एक हमारे प्रभुपाद के शिष्य ने सुंदर उदाहरण दिया था आत्मतत्व प्रभु ने, वो तो मालूम है छोटे छोटे मिरर्स मिलते हैं, कॉन्वेक्स मिरर ऐसे बाहर आते हैं वो। अगर एक हाथी को उसके सामने खड़ा किया जाए ना तो हाथी भी उसमें उतना ही छोटा दिखाई देगा। आजकल बड़े पावरफुल मिरर्स आ गए हैं कार वालों के लिए, लेकिन वो नीचे लिखना पड़ता है, ऑब्जेक्ट्स इन द मिरर आर क्लोजर देन व्हाट यू थिंक, क्योंकि पहले मिरर सिंपल था ना, तो जितना दूरी है उतनी दिखती थी कि 20 फुट पर कोई स्कूटर आ रही है तो 20 फुट पर दिखती थी। लेकिन अभी हेवी ट्रैफिक हो रहा है, एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, तो अच्छे मिरर्स निकालने पड़ते हैं कि ज्यादा ट्रैफिक दिखाई दे। लेकिन ज्यादा ऐसे दिखता है कि जैसे अरे ये तो बहुत दूर है, फिर ठॉक करके हो गया, अरे बाप रे ये तो पीछे ही था। तो ऑब्जेक्ट्स इन द मिरर आर क्लोजर देन यू थिंक लिखना पड़ता है। तो वैसे हाथी को अगर उस मिरर में, आईने में देखेंगे तो इतना महाकाय हाथी भी छोटा सा नजर आता है, इतना सा। या स्लाइड प्रोजेक्टर, पहले तो स्लाइड प्रोजेक्टर थे, अभी तो पावर पॉइंट आ गया है, लेकिन पहले स्लाइड्स के लिए भले एक बड़े हाथी का स्लाइड है लेकिन वो दिखने में इतना ही है। उसको प्रोजेक्टर के पीछे रखो फिर देखो वो कितना बड़ा दिखता है। तो परमात्मा है सबके हृदय में बैठा हुआ छोटा सा, लेकिन परमात्मा खुद छोटा नहीं है, हम छोटे हैं इसलिए हमारे साथ रहना पड़ता है उसको। और ये परमात्मा और काल, काल का मतलब है टाइम। जैसे मैंने पहले बताया था चिपलून के पास में एक काल का मंदिर है, काल भगवान, मैंने तो एक ही देखा है और कोई मुझे मालूम नहीं, महाराष्ट्र या भारत में भगवान काल की पूजा हो जाती है। काल क्यों बनाया गया है या काल शक्ति क्या करती है, ये तो बहुत ही टेक्निकल सब्जेक्ट मैटर है, 4th कैंटो में बताया गया है, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ मटेरियल एनर्जी करके, जिसको अगर पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं। कि ये भौतिक जगत बनता है तीन गुणों से, लेकिन ये तीन गुण या बाकी जो भी भौतिक शक्तियां है ना, वो मिक्स नहीं होती अपने आप में। आप शायद आयुर्वेद में जानते होंगे कि कभी कभी एक एक दो और तीन प्रकार के केमिकल्स हैं, उनको मिक्स करना है, तो उनको मिक्स करने के लिए वो तीनों को साथ में रखा तो कभी मिक्स नहीं होते, लेकिन एक चौथा ऐड करो ना तो चौथा कुछ सेहत का काम नहीं करता, स्वास्थ्य का काम नहीं करता, लेकिन वो तीनों को मिक्स कर देता है। इंग्लिश में उसको कहते हैं कैटलिस्ट। कैटलिस्ट खुद कुछ करेगा नहीं, लेकिन तीन लोगों को आपस में, जैसे कोई होता है ना एक व्यक्ति की तीनों के साथ दोस्ती है, वो तीनों की आपस में दोस्ती नहीं है, वो तीन अगर साथ में आएंगे ना तो हमेशा एक दूसरे को गाली दे रहेंगे, लेकिन ये चौथा अगर वहां उपस्थित रहेगा तो तीनों शांत, तीनों का उस पर विश्वास है। तो वैसे काल ये कैटलिस्ट है। भौतिक शक्तियां आपस में कभी मिश्रण नहीं होती, उनका मिश्रण नहीं होता, काल आकर उन सबको मिक्स करता है और फिर ये सारा जगत। जैसे तीन साल पहले, चार साल पहले मुझे मलेरिया हुआ था, मैं इधर ही, ये नीचे विंडो है उस रूम में था मैं, और मैं देखा था कि यहां पर काम हो चालू हो गया है, वो प्लिंथ लेवल या नीचे सब, तो कुछ नहीं था, और अचानक यहां पर ईंट पत्थर और सारा जैसे ब्रह्मांड बन गया समझो। अब कई लोगों ने इधर फ्लैट बुक किया था ना पैसे देके, B15 मेरा है, A22 तुम्हारा है, लेकिन उस समय A15 B22 कुछ था ही नहीं, जो भी फ्लैट था वो सब आर्किटेक्ट और बिल्डर और डेवलपर के केवल माइंड में था वो। लेकिन कुछ नहीं था तो भी लोगों ने अपना फ्लैट बुक करके रखा था वहां पर। वैसे ही भौतिक सृष्टि न होने पर भी जीव है वहां पर, प्लान कर रहे हैं कि अगर मुझे ये मिलेगा तो मैं ये बिजनेस करूंगा, मैं ऐसे करूंगा, मैं वैसे करूंगा, है सब पड़े सोए हुए विष्णु के शरीर में। और फिर जब विष्णु सोचते हैं कि चलो अभी इनको देते हैं चांस, एक जैसे कोई बिल्डर सोचता है वहां पर एक बिल्डिंग बना लेते हैं, जब कुछ नहीं था तो सडनली बिल्डिंग आ गई, जैसे ही बिल्डिंग बन गई सबने अपना अपना पहले बुक किया था, सब भागे अपने अपने फ्लैट में, ये मेरा, ये तेरा, ये गार्डन मेरी, ये ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। अभी हमको बोला नहीं चाहिए, लेकिन झगड़े होते हैं ना कभी कभी आपस में, दूसरे के गमले में से पानी आपके बालकनी में आता है या आपका इधर का लीकेज उसके घर में होता है, तो ये मिथ, ये कॉम्बिनेशन से हमारे लड़ाई झगड़े शुरू होते हैं। अगर मैंने ये फ्लैट यहां बुक नहीं किया होता और ये व्यक्ति मेरा पड़ोसी नहीं होता, और अगर हम कहीं ट्रेन में मिलते थे तो मैं गले मिलता था उनसे कि थोड़ा सा आप लीजिए ना, ये इडली लीजिए, ये पराठा लीजिए, अरे आप क्या है, हम क्या है, एक ही तो बात है कि मेरे पास पैसे नहीं, अरे ये लीजिए पैसे। तो क्यों हम कई लोगों के साथ बड़े ही प्रेम से व्यवहार करते हैं और कुछ लोगों के साथ, अरे वो वहां दिखाई दिया तो घुस गए इस गली में कि ये सामने आ गया, क्यों? ये मिथ, सोशल इंटरेक्शन। अगर चार लोग बैठे हैं, रमी खेल रहे हैं या कुछ भी खेल रहे हैं या खेल भी नहीं रहे हैं, केवल गप्पे लगा रहे हैं, और पांचवा आ गया तो बैठो बैठो, अरे जगह है, बैठो बैठो, देखो इतनी जगह, बैठो या इधर बैठो, तो प्रेम से बिठाएंगे। और अगर तीनों लोग बैठे हैं और दूसरा कोई आ गया जो उनको पसंद नहीं है, जगह कहां है, कहां जगह, बैठो जगह, जाए भाई बैठो, सीधा बोलते थे लोग, कहते हैं जगह क्यों नहीं है, यहां पर चार लोग बैठ सकते, ठीक है बैठो ना, हम थोड़ी ना बोलते, इनको हटाओ, हम क्यों हटे, और कोई बोले हटो तो ऐसे बढ़ते खाली। सिंपल उदाहरण है ये, लेकिन मन में वो भाव नहीं है। तो ये इस काल का एक फीचर है कि केवल इंटरैक्शन से, सामाजिक इंटरैक्शन, वहां पर वो ये नहीं कह रही है कि केवल मतलब केवल बिना किसी हेतु के, जैसे ही हम मिथ एकत्र हो गए तो कली। एक बार एक अमेरिकन भक्त थे, उन्होंने कहा कि वृंदावन के, वृंदावन में जो फेमस गली है ना जहां पर सब हम बीड बैग्स वगैरह खरीदते हैं, तो वहां पर एक रिक्शा और दूसरी रिक्शा दोनों की टक्कर हो गई, दोनों का झगड़ा शुरू हो गया। तो उन्होंने कहा देखो युग का मतलब है दो, युगल तो युग मतलब दो, तो कलयुग में जब कहीं भी दो हो जाते हैं तो कली, कली मतलब झगड़ा, तो कली युग, कली होने के लिए केवल युग की आवश्यकता है बस। यू नीड ओनली टू पीपल टू स्टार्ट ए क्वारल, बस। क्यों ये झगड़ा क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है, बस हम दो है इसे झगड़ा हो रहा है और कुछ। तो एक 11th कैंटो में कहानी है कैसे एक अविवाहिता कुमारी, एक युवती, युवती नहीं कुमारी, और वो जब भोजन बना रही होती है तो उसके कंकण बहुत आवाज करते होते हैं, कण 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 कण, और उसको वो आवाज बाहर बैठे हुए अतिथि को सुनाई देने की इच्छा नहीं है। तो वो पहले एक निकालती है, फिर एक निकालती है, फिर एक निकालती है, अंत में वो केवल एक ही रखती है, फिर आवाज आना बंद हो जाता है। तो ये सिंपल बात है लेकिन उसका परपोर्ट कितना हेवी देते हैं उधर आचार्य। इसीलिए कई आध्यात्मिक मार्ग पर प्रगति करने वाले लोग अकेले रहना पसंद करते हैं कि अगर झगड़ा नहीं होना है ना तो अकेले रहो, लेकिन वो भी डिफिकल्ट है। आप और मेरे लिए, हम दो घंटे के लिए अकेले रह सकते नहीं, तो जीवन भर की बात ही छोड़िए। एक मार्ग है अकेले रहकर सब कुछ छोड़कर किसी गुफा में जाकर रहो अपने मस्त। अब हमेशा ये साधु लोग मस्त ही शब्द यूज करते हैं कि रहो अकेले मस्त, वो मस्त कहते रहते अभी तक पता नहीं है। हाउ डू स्टे अलोन एंड मस्त। तो प्रभुपाद कहते हैं कि मेरे गुरु महाराज ने, माय गुरु महाराज प्रैक्टिकली इन्वेंटेड दिस हरे कृष्ण प्रीचिंग मिशन फॉर दिस एज। तो क्या उनका इन्वेंशन था, सब भक्त मिलके रहो। आप कहेंगे अरे लेकिन मिलेंगे तो झगड़े होते हैं ना। हाँ झगड़े होंगे, जरूर होंगे, लेकिन उसके ऊपर उपाय योजना भी सिखा करो। एक भक्त को लगता है उसने ऐसे कोई प्रश्न पूछा होगा कि अरे सब छोड़ छाड़ के आ गया मैं और इस्कॉन ज्वाइन किया और यहां पर भी झगड़े हैं। प्रॉपरली कहा नोबडी शुड एक्सपेक्ट यूटोपिया। एक सुंदर लेटर है उनका। यूटोपिया एक इंग्लिश शब्द, उसका मतलब है एकदम ऐसे नंदन जैसा वातावरण, के सब एक दूसरे केवल प्रभु 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 प्रभु, केवल बस दिन भर केवल दंडोत कर रहे हैं, आलिंगन दे रहे हैं। तो ये नहीं होता ऐसे, क्या करें, होना चाहिए। लेकिन एक बार राधानंद महाराज बता रहे थे कि अगर आपको कंट्रोवर्सी फ्री डिस्कशन चाहिए तो केवल हरि कथा करो, बिना किसी विरोधाभास के या बिना किसी लड़ाई झगड़े के। अगर कुछ घर में भी अगर शांति चाहिए ना, तो हरि कथा अगर सेंटर पॉइंट है, आप देखेंगे कम से कम उतना समय तो कोई कुछ भी नहीं बोल रहा है। और जैसे ही वो हरि कथा जैसे एक चोर से फिलने वाला रोटेशनरी मूवमेंट है, जैसे उसमें से कोई टेंजेंट बाहर निकल गया फिर झगड़ा शुरू हो गया। तो निर्जन भजन को खास करके हमारे आचार्यों ने मनाही की है उसकी। ये नहीं कि निर्जन भजन करना खराब है या निर्जन भजन में कोई उपलब्धि नहीं होती। लुकिंग एट दिस एज, लुकिंग एट आवर इंटेलिजेंस, हमारी बुद्धि, ये इसका प्रदूषण देखकर, कलयुग का प्रदूषण देखकर उन्होंने कहा है कि भक्त के समाज में रहो। श्री प्रभुपाद ने कभी कभी बहुत प्रैक्टिकल सॉल्यूशन बताए थे, ठीक है अगर आपको ये सिटी में प्रॉब्लम होता है तो आप वो सिटी में जाओ, आपको ऐसे नहीं होता तो आप वैसे करो, सेवा चेंज करो, लोकेशन चेंज करो, कुछ भी चेंज करो, लेकिन मोटिवेशन चेंज मत करो। ये नहीं कि कृष्ण की सेवा का कुछ मिलता नहीं, किसी और की सेवा में चले जाएंगे, वो बहुत बड़ा धोखा होगा। सो विल स्टॉप हियर, अगली बार से हम आगे प्रोसीड करेंगे। कोई कॉमेंट्स या कोई प्रश्न है? माइक
एक बात से रिलेटेड नहीं, लेकिन मुझे डिस्टर्ब जब ये ऐसा एकदम डरावना या लाइफ लेने वाली चीज होता है, उसने उनको आठ आठ बच्चे होने तक इसलिए रखा, क्यों में रखा, और उस टाइम पे हस्तिनापुर में भीष्म थे, भीष्मवास वरियर लाइक की नो वन कैन इवन क्वेश्चन आल्सो फॉर नॉट टू, तो अभी इतने नजदीक का रिलेशन है, समझो इस युग में यदि ऐसा होता है तो हम लोग कुछ तो करेंगे कि और कितना पावरफुल आदमी भी है कि वो ये क्या रिटेलेट हो सके, तो ऐसा कुछ हुआ या नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, ये नहीं हुआ.
यू आर फोर्सिंग मी टू स्पेकुलेट. इनका प्रश्न है कि कुंती देवी वसुदेव जी की बहन, वसुदेव देवकी को कंस ने कैद खाने में रखा और इतना उनका बुरा हाल किया, छल किया, और भीष्मदेव थे वहां पर इच्छा मरणी, परशुराम जैसे गुरु भी उनको परास्त न कर पाए, तो इतना आपस में क्लोज नाता है, तो किसी ने किसी को बताया क्यों नहीं कि अरे भीष्मदेव जाके एक कंस को मारो या कुछ करो, जो आजकल आप और हम करेंगे अगर किसी को तकलीफ है, तो ये उस समय क्यों नहीं किया गया. सबसे पहले इसका उत्तर तो मैं जो सेफेस्ट उत्तर इस्कॉन में देने लायक है वो है ये लीला है, और लीला को आगे बढ़ाने के लिए, लीला एक ड्रामा जैसी है, तो लीला को आगे बढ़ाने के लिए सही वातावरण होना ही चाहिए. कई बार कई घटनाएं दे सर्व एज अ बैकड्रॉप, जैसे हमारे ड्रामा होते हैं ना, तो राजमहल की बात चल रही है, दो व्यक्ति राजमहल में बात कर रहे हैं, तो पीछे का जो बैकड्रॉप है वो राजमहल से दिखना चाहिए ना. अगर इसके पहले एक जंगल का सीन था और किसी ने वही बैकड्रॉप रख दिया और राजा कह रहा है कि मेरे महल में ऐसा क्यों हो रहा है, लोग कहेंगे अरे महल क्या है, तो जंगल है. हालांकि डायलॉग सही है और सबको समझ में आ रहा है, किसी की गलती भी हो सकती है, लेकिन वो बैकड्रॉप कोई ड्रामा का मेन पार्ट नहीं है, लेकिन इट सर्व्स एज ए फाउंडेशन फॉर अंडरस्टैंडिंग. तो लीला की बात चल रही है हमारी. भीष्मदेव का जो भीष्मदेव की लॉयल्टी, उन्होंने जो शब्द दिया था वो हस्तिनापुर के सिंहासन की मैं सेवा करूंगा, ये नहीं कि भीष्म इज लाइक वर्ल्ड पुलिस, किसी ने अरे हमको प्रदूषित चल रहा है, अरे हमारा ये किसी ने गाय छीन ली मेरी, हाँ आ रहा हूं मैं अभी, क्योंकि मैं तो मरने वाला हो ही नहीं. कोई भी कंप्लेंट कभी भी आ जाओ, 24/7 1-800 टोल फ्री कॉल है, ऐसा कोई भीष्मदेव का सिचुएशन नहीं थी उनकी. तो कंस क्या कर रहा था, एक के बाद एक असुरों के साथ अलायंस बना रहा था वो, उसका कि चलो मेरे साथ शामिल हो जाओ, मेरे साथ शामिल हो जाओ, मेरे साथ आ जाओ, मेरे साथ आ जाओ. जो उसको नहीं मानता था उसको कंस एक प्राइवेट मीटिंग के लिए बुलाता था, उसको प्राइवेट मीटिंग अच्छी तरह होने के बाद फिर वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करता था कि आज से मैं और कंस दोस्त. गर्ग संहिता बताया गया है कि ये अगासुर, बकासुर और प्रलम्बासुर ये सब बुरी तरह मार खा गए कंस से और फिर उसके दोस्त बन गए. कोई भी ऐसे प्रेम से उसके दोस्त बने हुए नहीं है, क्योंकि कंस को शायद इतनी समझ नहीं थी कि वो विष्णु को नहीं मार सकता, लेकिन ये बाकी असुरों को इतना डाउट था कि विष्णु को नहीं मार सकते हम, मतलब वो इतने निपट असुर नहीं थे, कंस जितना था उतने वो नहीं थे. तो कंस ने थोड़ा ट्रीटमेंट देके उनको अपने जैसे बना दिया कि मेरे साथ रहने का ठीक है, बोले ठीक है अभी क्या है, मरना तो है ही अभी. तो इस तरह से अलायंस करके, इस तरह से ये करके वो करके कंस ने अपना जैसे एक सेंटेंस है, थोड़ा कंफ्यूजिंग सेंटेंस है अगर आप कृष्ण बुक पढ़ेंगे तो, कि कई डायनेस्टीज अंधक, भोज, वृष्णि, तो प्रोबर लेते हैं इंग्लिश में, दे वेर ऑल टेरराइज बाय कंसा एंड लेटर दे ऑल बिकेम हिज फ्लैटरर्स, कि वो भी उसकी स्तुति पाठक बन गए. तो ये एक विशिष्ट रूप से कृष्ण भगवान के आविर्भाव के लिए पॉजिटिव वातावरण बनाने के लिए किया गया. ये एक भगवान की लीला के लिए ऐसे होना पड़ता है. लाइक टू ऐड समथिंग परमहंस प्रभु, आदान प्रभु. माइक जरा जरा पीछे गिव द माइक बैक. इनका प्रश्न ये है कि रोज की दैनंदिन जीवन में माला करना, पढ़ाई करना, ये करना, घर गृहस्थी संभालना, नौकरी, व्यवसाय, ये सब में इससे आगे नहीं बढ़ सकते. और प्रभुपाद जी तो कहते हैं कि चींटी को अपना खाना आराम से मिलता है, एक हाथी को खाना आराम से मिलता है, तो मनुष्य जो दोनों के बीच में है उसे क्यों चिंता करने की जरूरत है. जो आपका खाना है, भोजन है, आहार का मतलब है जो भी चीज आपको जीवन में जरूरी है वो सब आ जाएगी. तो ठीक है, ये काफी कंफ्यूजिंग मामला है, जरा ध्यान से समझना चाहिए इसको. सब कुछ भगवान करता है तो हम ऐसे बैठे चलेगा? नहीं. अरे भगवान कुछ नहीं करता, तुमको सब करना चाहिए तो चलो. समाज में ये दो किस्म की प्रवृत्तियां अधिकतर दिखाई देती है, या तो भगवान सब कुछ करने वाले हैं तो मैं कुछ नहीं करूंगा, मतलब मैं निष्क्रिय बैठूंगा. तो निष्क्रिय बैठना ये लेजीनेस है, और भगवान कुछ नहीं करते, सब कुछ हमको करना है. अरे आपकी बाहू में बल है, चाहो तो चट्टान को चूर्ण कर दो, ये कर दो, वो कर दो. तो पहले प्रवृत्ति से वी बिकम लेजी, और दूसरी प्रवृत्ति से वी बिकम क्रेजी. पाश्चात्य जगत में केवल दूसरी प्रवृत्ति बहुत दिखती है, और भारत में कई जगह पर स्पिरिचुअलिटी के नाम पर लेजीनेस दिखता है. अब जैसे सारे मीरा रोड को तीन बार दौड़ के एक प्रदर्शन लगाओ या इधर कोने में बैठे रहो, तो दोनों में मामूली से आंसर में ऑनेस्टली आपको यह बताया जाएगा कि दोनों का लाभ उतना ही मिलेगा. अगर तीन बार प्रदर्शन करोगे तो 100 रुपए मिलेंगे, और यहां पर दो घंटे बैठे रहो तो 100 रुपए मिलेंगे. आप क्या चूज करोगे? अरे बैठ जाओगे, क्या प्रॉब्लम है, भागने की क्या जरूरत है. सो लेजीनेस इज ए गिवन, लेजीनेस इज आवर डिफॉल्ट मोड. और अर्जुन भी यही पूछ रहा था भगवान को कि एक मिनट, आपने अभी कहा कि ज्ञान और एक्शन इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, नॉलेज ऑफ डिवोशन एंड एक्टिंग इन डिवोशन, ये दोनों अगर एक ही है ना, तो मुझे क्यों यहां पर मरवा रहे हैं सब युद्ध में मार के लोगों को. वेरी इंटेलिजेंट क्वेश्चन. दोनों अगर सेम है तो भगवान कहते हैं कि देखो ये दोनों मेरे दृष्टि से सेम है, बट यू आर नॉट फिट फॉर इट. प्रॉब्लम वो है, प्रॉब्लम ये नहीं है कि ये दोनों प्रोसेस में कोई ऊंचा नीचा है क्या, ये 19-20 है क्या, दोनों प्रोसेस सेम है, आई गारंटी इट. But you are not fit for sitting in one place and just thinking of devotion. एक आचार्य बताते हैं कि समझो भगवान ने अर्जुन को कि बताया था कि अर्जुन ने भगवान से कहा कि मैं क्या करूं, समझ नहीं आ रहा है. भगवान ने कहा कि मुझे भी समझ नहीं आ रहा है, गीता खत्म हो गई वहां पर, और चलो शंख वंख बजाओ सब पणवान गोमुखा टैं 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 टैं, सब युद्ध शुरू हो गया और सब देख रहे हैं कि अर्जुन तो ऐसे ही सब निकाल कर गांडी में मौजूद रखे ऐसे ही बैठा हुआ है, और अर्जुन को देखकर कोई उसको मार भी नहीं रहा. कैसे ही तो अर्जुन है, कुछ भी कर सकता है, कि यह कोई चाल तो नहीं है उसकी, ऐसे ही बैठा है इधर. तो भगवान कहते हैं कि देखो अर्जुन, ये जो युद्ध शुरू हो जाएगा ना, ये युद्ध का जो रजोगुण बढ़ते जाएगा, रजोगुण इज लाइक टेम्परेचर, एक विशिष्ट रूप पर आते ही आप चिल्ला के उसमें दौड़ पड़ोगे. कोई कहकर के देखो ये कर्ण मार रहा है मुझे, ये मुझे मार रहा है, अरे आता हूं मैं अभी. उस समय जब आप युद्ध करोगे, दैट विल बी ओनली पैशनेट वॉरफेयर. तब वो आप रजोगुण के अमल में जो काम करोगे ना, उसमें आपके पातक बढ़ते जाएंगे. यू विल ओनली इनकर मोर सिन. ये नहीं है कि आप देखते रहोगे ठीक है अभी मैंने इसको छोड़ दिया ना, छोड़ दिया मतलब छोड़ दिया. ये मैंने इधर एक बार उदाहरण दिया था, आई लाइक इट वेरी मच, कि दो पड़ोसी के बीच में झगड़ा होता है, बूढ़े लोग होते हैं वो, तो वो दोनों आपस में बात नहीं करते, लेकिन दोनों के जो पोते हैं वो दोस्त हैं, अभी तक छोटे बच्चे हैं ना वो, तो वो चेस खेलते रहते हैं. तो एक बार दोनों बूढ़े देख रहे हैं, एक आंख से देख रहे हैं कि मेरा पोता क्या कर रहा है, एक आंख से पेपर पढ़ रहे हैं, और बात नहीं करना है उससे ना, क्योंकि उसका झगड़ा हो गया. फिर एक जो पोता है वो अपने दादा को बोले क्या करूं, तो बोलता है उसको आगे बढ़ाता है. तो जैसे वो आगे बढ़ाता है उसका वो एक प्यादा वो खा लेता है उसको. तो भी दूसरा जो है वो कहता है कि बाप रे ये तो अभी दो दो हो गए, पहले तो मेरे सामने केवल मेरा दोस्त था. तो वो अपने पोते को अब दादा को देख के कहता है कि भी क्या करूं, तो वो कहता है कि हाथी को ऐसे करेगा, तो हाथी को ऐसे करता है. बाद में दोनों का पेपर नीचे आ जाता है, दोनों देख रहे होते हैं. फिर एक समय वो गेम इतना हाइट पे पहुंच जाता है कि एक पोते को उठाकर ऐसे बाजू में रखता है, दूसरे पोते को उठा के बाजू में रखता है, और दोनों ये तेरा खा लिया मैंने, ये तेरा, अरे तू क्या, ये क्या, वो क्या. सो एक्चुअली ये जो एक्टिविटी है ना, ये पहले केवल सबड्यूड अवस्था में थी पहले. सो दिस इज व्हाट कृष्णा इज मीनिंग बाय सेइंग कि पहले तुम्हारा माइंड काम करता है, बाद में केवल तुम्हारे हाथ पैर काम करते हैं. बोथ आर इक्वली बाइंडिंग. ये नहीं है कि ओनली व्हेन यू स्टार्ट हैंडलिंग चेस पीसेस तब आप खेलने लगे. तो मेक ए लिस्ट ऑफ थिंग्स व्हिच आर डूइंग स्पिरिचुअल लाइफ, कि ये करना पड़ रहा है, ये पढ़ाई करना है, काउंसलर्स को देखना है, काउंसलर का सेवा करनी है, महाराज की सेवा करनी है, प्रोपार की सेवा करनी है, हार बनाना है, ये करना है, पेशेंट्स को देखना है, इतना 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 सब. इसमें से मैं समझो टिक 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 टिक, ये सब मुझे नहीं करना है, क्या उससे मुझे टाइम मिलेगा? केवल विल माई माइंड बी ऑक्यूपाइड इन कृष्णास थॉट्स, कोई गारंटी नहीं. तो इसीलिए प्रभुपाद ने पहले जो एक्टिविटी का फॉर्मूला दिया है कि रिमेन एक्टिव. अभी ये नहीं कि फोमिंग एट द माउथ या आपका हेल्थ सफर हो जाए, नॉट दैट काइंड ऑफ एक्टिविटी. दैट मच इंटेलिजेंस शुड नो. जैसे आप माताएं, आप जानते हैं कि कई आपके पतियों को, किसी को नमक अच्छा लगता है ज्यादा, किसी को थोड़ा नमक कम लगता है, किसी को तीखा अच्छा लगता है ज्यादा, किसी को तीखा कम लगता है. तो घर में व्यंजन बनाते समय यू ऑलवेज एडजस्ट सो मच. जैसे अगर किसी को घर में कोई टेम्पल से डिवोटीज बुलाएं, तो उनके लिए जबरदस्ती कम मसाला, कम नमक, कम वाला बनाना पड़ता है. जैसे मैं एक जानता हूं, एक नाम नहीं लूंगा, एक एक्स जगह पर एक डिवोटी है, जैसे घर में अच्छा प्रोग्राम होता है, लेकिन वो सबके साथ बैठ के नहीं खाता हो, वो सबको अच्छी तरह से प्रसाद देने के बाद. तो मैंने एक दिन पूछा, ये हमेशा अंदर रहकर क्यों खाता है? तो वो उसने सुन लिया, बोला प्रभु जी क्या है ना, मुझे बहुत ज्यादा खाने को लगता है, तो सबके सामने शर्म आती है, तो इसलिए मेरी पत्नी कहती है कि आप अंदर आके खाओ. तो शी नोज कि उसकी जरूरत ज्यादा है, तो उसको वो अलग प्राइवेटली प्रेम से खिलाती है वो. सो एक्टिविटी और इनएक्टिविटी, कि ये दोनों में अगर हमने चॉइस किया तो हमारा कंडीशन माइंड हमेशा इनएक्टिविटी की तरफ जाएगा. उससे बचने के लिए जैसे नॉर्मली अगर एक्टिविटी लेना है तो हम थोड़ा ज्यादा ही लेना चाहिए, टेक सम मोर नॉट लेस, बट देन यूज योर कॉमन सेंस. ये नहीं कि केवल हम पैशनेट बढ़ाते जाएंगे तो हम सक्सेसफुल हो जाएंगे. नो. सनातन गोस्वामी को महाप्रभु ने कहा, तू क्या समझता है केवल सुइसाइड करने से तुझे अगर कृष्ण प्राप्ति होगी? तो मैं इतने साल तक यहां पर केवल राह देता था. आई एम प्रिपेयर टू गिव अप माई बॉडी मिलियन टाइम्स, बट जस्ट बाई गिविंग अप योर बॉडी मिलियन टाइम्स कृष्ण इज नॉट प्लीज्ड. कृष्ण भगवान केवल आत्महत्या करने से नहीं प्राप्त होंगे. सो वॉट सेटिस्फाइज कृष्णा देन? इनएक्टिविटी भी नहीं और सुपर एक्टिविटी भी नहीं. सो देर इज ए प्रोसेस. जैसे हर एक दिन के लिए आप डॉक्टर्स हैं, आप अगर किसी को आंख की ज्यादा बीमारी हो गई है तो कहेंगे 10 ml ले लो, 10 दिन के बाद बोलेंगे अभी 5 कर दो, अभी 3 दिन में एक बार डालो, अब बंद करो. इज इट नॉट समथिंग लाइक दैट? तो वैसे ही हमारी भी एक्टिविटीज भी डेली अपने सिकनेस के अनुसार थोड़ी कम करो, फिट हो रहे तो ज्यादा करो. इट इज कंडीशन मेंटेलिटी ऐसी होती है ऑल और नन. ये ऑल और नन कभी चलता नहीं. वी ऑलवेज हैव टू सी वॉट कैन बी डन एज द बेस्ट. होप दिस हेल्प्स. हैव आई कंफ्यूज यू मोर और अच्छा, अगर आपका प्रश्न इतना ही है कि संघर्ष सबके जीवन में है तो साफ साफ ही नहीं बोलते कि संघर्ष करो करके. नो, इट्स नॉट लाइक दैट. संघर्ष हमारा हमारे मन के साथ है. आवर माइंड हैज कन्विंस्ड अस दैट यू आर ए एंजॉयर एंड ए कंट्रोलर, एंड आवर ओनली स्ट्रगल इज टू कन्विंस दिस फूल, दिस इडियट, दिस एनिमी ऑफ आवर्स कि तू भी एंजॉयर नहीं है, कंट्रोलर नहीं है, और मैं भी एंजॉयर नहीं हूं, कंट्रोलर नहीं हूं. माइंड शुड ओबे द सोल. तो हो क्या गया है, द माइंड हैज ब्रेन वॉश द सोल कंप्लीटली. ऐसे कई बार अगर हम देखें किसी को, तू इसके बहकावे में कैसे आ गया, तुझे तो अक्ल है कि नहीं, हम कहते ना किसी को ये तो महामूर्ख है, तू महामूर्ख कैसे बन गया. सो दिस इज वॉट इज द प्रोसेस कि वी हैव टू टेल द सोल विच इज अस कि तू इसका क्यों सुन रहा है, दिस फेलो इज कंडीशन, यू आर नॉट. मुझे कि नहीं नहीं नहीं, ये हमारी दोनों की दोस्ती बहुत सालों से है इसलिए. सो द स्ट्रगल इज दिस. द स्ट्रगल इज नॉट टू फाइंड फूड, और स्ट्रगल इज नॉट टू अवॉइड डिजीज. दैट कृष्णा इज सेइंग प्रकृति क्रियमाणा नी. यू थिंक यू आर ऑल पावरफुल? माई नेचर इज वर्किंग अंडर माई डायरेक्शन, शी इज ऑल पावरफुल. कभी कोई वस्तु रास्ते में गिर जाती है बाजार में, हम घर से लौट कर देते तो वो वही की वही है, हमने हरे कृष्णा भगवान बचा लिया. और कोई चीज घर में गुम हो जाती है, अपने घर में, और आप सारे घर वाले को सुनते हो ढूंढो ढूंढो ढूंढो, नहीं मिलती. दिस इज द एग्जांपल गिवन. तो इसका मतलब आप कहेंगे ये तो फ्लूक है, ये तो लक की बात है, तो ये बात है. इट इज नॉट दैट. इवन वेन समथिंग बिकम्स ऑटोमैटिक तब पता चलेगा कि अरे इसमें तो स्ट्रगल है ही नहीं. जैसे ट्रेन में बैठने के बाद अगर ट्रेन फास्ट जाती है तो मैं हमेशा सोचता हूं थोड़ी स्लो जा रही है. लेकिन कभी एक बार जो ऐसे कुछ बोरीवली में हुआ था, 4-4 घंटे लेट, तो यहां से निकला मैं और मैंने पूछा आप कब से बैठे हैं ट्रेन में? मैं पहुंचा था 1:50 को दोपहर को. लोग कह रहे हम 10 बजे से बैठे हैं इधर तक. मैंने कहा बाप रे 10 बजे से इधर बैठे और 2 बजने को आ गए और 2:30 को ट्रेन चालू हो गई. तो जब वो ट्रेन निकली इतनी स्लो जा रही थी कि चल के भी उसके आगे जा सकते थे दौड़ से, बट आई वॉज सो ग्रेटफुल के जा रही है, आगे जा रही है, आज नहीं तो कल ग्रैंड रोड पहुंचा ही देगी. सो समटाइम्स व्हेन इमरजेंसीज कम दैट टाइम यू अंडरस्टैंड कि क्या वैल्यू है वो चीज का. सो हमारा जो एक तो यंग बॉडी है या यंग माइंड है या कंडीशन ये है, इसमें हमको लगता है कि मेरी तरफ से हो रहा है, मैं कर रहा हूं, ये हो रहा है, वो हो रहा है. अभी ये रियलाइजेशन आना नहीं चाहिए सबको, लेकिन आना ही रहता है कि द टाइम वी नो दैट वी आर हेल्पलेस, सब कुछ भगवान ही करते हैं. बिफोर दैट फिजिकल स्टेट कम्स, प्रॉपर इज सेइंग यूज योर कॉमन सेंस एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड whether यू आर रियली द डूअर और नॉट, और वॉट एग्जैक्टली इज द स्ट्रगल. सो इट्स ओनली अ क्वेश्चन ऑफ टेकिंग आचार्यज एंड साधुज एक्सपीरियंस और ट्रस्टिंग अवर ओन सेंसेस. अल्टीमेटली इट बॉइल्स डाउन टू ओनली दैट, whether आई शुड, whether आई एम फीडिंग माई फैमिली, देर फोर दैट स्ट्रगल इज नीडेड और नॉट. एक दूसरी बात ऐसे बोली जाती है, वर्क एज इफ एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन यू, प्रे एज इफ एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन कृष्णा. इट्स अ टफ थिंग, वेरी एंटरटेनिंग टू हियर, बट इट्स अ टफ थिंग कि काम करते समय ऐसा काम करें कि सब कुछ मुझ पर निर्भर है, और प्रार्थना करते समय ऐसी प्रार्थना करें कि मुझे कोई नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला, सब कुछ भगवान द्वारा ही किया जाता है. All right, we'll stop here. Thank you very much. Hare Krishna. थोड़ा लेट हो गया आज, क्षमा करना. श्री प्रभुपाद की.